नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। आज उनके विचारों को पूरा विश्व चल रहा है और आज महात्मा जी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए हैं। अनुप सर, मोबाइल आने पर स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार
सर। क्या वर्तमान परिवेश में बापू के विचार कितने प्रासंगिक है सर?
वर्तमान जो परिवेश है इसकी आवश्यकता ही है बापू के विचार। वर्तमान परिवेश बापू के विचार के बिना नहीं चल सकता है और पूरी दुनिया बिना बापू के विचारों को नहीं चल सकती है। आज बापू का विचार ही है जो एक बहकती हुई दुनिया को संभाल सकती है। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया नाना प्रकार के कुप्रथाओं से ग्रसित हो रही है। कहीं हथियार की दुनिया का निर्माण हो रहा है, कहीं बम के दुनिया का निर्माण हो रहा है, कहीं हिंसा के दुनिया का निर्माण हो रहा है, कहीं कटुता के दुनिया का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये निर्माणों से कोई दुनिया एक नई दिशा नहीं तय कर पा रही है क्योंकि इसमें विचार नहीं है। अगर इसके जगह पे गांधी के विचारों को अपना लिया गया होता और गांधी का विचार स्वयं इन समस्याओं का हल है तो दुनिया एक नई दिशा की तरफ बढ़ गई होती। आज दुनिया के अंदर जो असमानता बढ़ रही है, जो वैमनस्यता बढ़ रही है, जो पीड़ा बढ़ रही है, उसका निदान सिर्फ और सिर्फ गांधी के विचार में है, गांधी के अहिंसा में है, गांधी के सत्याग्रह में है, गांधी के अपरिग्रह में है। इसके सिवा कोई रास्ता दुनिया के लिए नहीं है। और बहकती हुई दुनिया को, अंधेरे में जाती हुई दुनिया के लिए अगर कोई प्रकाश पुंज के रूप में काम कर रहा है तो गांधी का विचार है।
सर, क्या बापू के जो ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी वो सर आज कितना सार्थक साबित हो रही सर?
एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए कि अभी जो कोरोना काल चल रहा था और बापू की एक छोटी सी पुस्तक है हिंद स्वराज, आप उसको पढ़िए। बापू ने उसमें साफ साफ लिखा है कि जो रेलगाड़ी की व्यवस्था थी उस समय, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है रेलगाड़ी की, चाहे हवाई यात्रा, यह बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने वाली है। आप कोरोना का उदाहरण ले लीजिए कि कोरोना की उत्पत्ति जो हुई चीन के वुहान शहर में हुई और वहां से कोरोना चल करके हवाई मार्ग से भारत के हवाई पट्टियों पर आया, वहां से वो ट्रेन में बैठ करके गांव तक गया। और कोरोना के काल में जो पैसे वाले लोग थे, जब पूरी तरीके से तबाह होने लगे तो कहां भग करके गए, गांव में जाकर के रहने लगे। जिनके पास व्यवस्था नहीं थी वो तो कैसे भी शहरों में रहे बेचारे, लेकिन जिनके पास व्यवस्था थी वो गांव में चले गए। और कोरोना काल में आप उठा करके देखिए कि ज्यादा गांव प्रभावित नहीं हुए, दूसरी लहर आई तब जाकर के गांव प्रभावित हुए क्योंकि तब तक कोरोना गांव को पहुंचाया जा चुका था, पहुंच चुका था। तो आज भी जो गांव है, और बापू का जो गांव था, बापू तो कहते थे कि भारत गांवों के देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो एक सुदृढ़ गांव का निर्माण करना चाहते थे, आत्मनिर्भर गांव बनाना चाहते थे। एक ऐसा गांव जो अपने बल पर खड़ा हो, जो सरकार के सामने हाथ फैला करके खड़ा ना हो। लेकिन आजादी के बाद के जो गांव बने हैं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि गांव एकदम पूरे कंगाल हो गए हैं, वो गांव सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए क्योंकि सरकार ने जो बजट का मुंह है वो शहरों के तरफ और पैसे वालों के तरफ घुमा दिया है। गांधी कहते थे कि शहरों के बजाय अगर तुम बजट के मुंह को, सरकारी व्यवस्था को गांवों के तरफ कर रहे हो, गांवों को आत्मनिर्भर बना रहे हो, तो न शहर परेशान होगा न गांव परेशान होगा। और आजादी के पहले के भारत को भी देखिए और उसके पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले के भारत को देखिए तो हमारा भारत खुशहाल था, हमारा भारत धनी भारत था, हम गरीब नहीं थे। हम गरीब कब हुए? आजादी के बाद और अंग्रेजों का भारत पे कब्जा होने के बाद हम गरीब हुए। आज तो बहुत बड़े बड़े कल कारखाने हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर व्यवस्था है, तकनीकी में आगे हम, टेक्नोलॉजी में आगे, हर चीज में हम आगे है, लेकिन फिर भी असमानता की खाई क्यों बढ़ती जाती है? अभी इसी दावोस सम्मेलन का सर्वे उठा करके देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड जो पेपर आता है उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के आधी आबादी की संपत्ति भारत के सिर्फ 98 लोगों के पास है। यानी भारत में सिर्फ 98 लोग ऐसे हैं जो आधी आबादी के संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा करके बैठे। इसी कोरोना काल में एक हिंदुस्तान का पूंजीपति प्रति घंटे 90 करोड़ रुपया कमाया, और इसी हिंदुस्तान के अंदर 84% लोगों की आय घटी, 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। आखिर कौन से भारत का निर्माण हो रहा है? तो बापू इस भारत का निर्माण नहीं करना चाहते थे। बापू इसलिए चाहते थे कि गांव मजबूत हो, और गांव मजबूत होने के लिए उन्होंने रचनात्मक कार्यों को बताया, 14 प्रकार के तालीम की बात की। वो चाहते थे कि गांव में हर व्यवस्था रहे। तो आज भी गांव बापू के गांव ग्राम स्वराज की जरूरत है, ताकि गांव आत्मस्वलंबी बने, गांव मजबूत हो, गांव से पलायन न जाए, और गांव से जब पलायन नहीं होगा, गांव मजबूत होगा तो स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा हो जाएगी, हमारा प्रकृति का अच्छा रहेगा, तो इस प्रकार से हमारा गांव मजबूत होगा। तो बापू के जो कल्पना थी ग्राम स्वराज को लेकर के, आज तो उसकी नितांत आवश्यकता है, 1947 से ज्यादा आज आवश्यकता है, क्योंकि आज लोगों के पास बेरोजगारी ज्यादा हो चुकी है।
सर, क्या बापू के विचारों को जो आज के युवाओं तक जो पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, किस तरह से युवाओं तक पहुंचाए जाने चाहिए? सर,
सबसे पहले तो जो बापू के विचार को मानने वाले लोग हैं, आप राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, तो लोहिया जी ने कहा था कि 3 प्रकार के गांधीवादी है। एक गांधीवादी मठी गांधीवादी, जो बड़े बड़े आश्रम बना करके गांधी के नाम पे काम करते हैं। दूसरे गांधीवादी है सरकारी गांधीवादी, जो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को गांधी को याद करते हैं। और तीसरे जो गांधीवादी है, जिसमें लोहिया जी अपने आप को रखते थे, कुजात गांधीवादी, यानी उनको मीडिया का सपोर्ट नहीं होता था, वो किसी प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं करते थे, लेकिन गांधी के जीवन को जीते थे और उसी बात को कहते थे। तो आज कुजात गांधीवादियों की जरूरत है। अगर गांधी को युवाओं के बीच में ले जाने की जरूरत है, गांधी को गांवों में ले जाने की जरूरत है, तो वो कर सकता है कुजात गांधीवादी, जिसको न मीडिया की शोहरत हो, न जिसको बहुत पैसे की शोहरत हो, और न ही जिसको प्रचार की शोहरत हो। तो युवाओं को बीच में अगर गांधी को ले जाना है, तो हमें युवाओं के हिंसा को भी सहने की आदत डालनी होगी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के समय युवा पूरे प्रसन्न थे उनसे, गांधी जी को तो युवा उल्टा सीधा भी बोलते थे, फिर भी गांधी जी उनके बीच में जा करके अपनी बात को रखते थे, उनको समझाते थे। वो जहां सहमत नहीं होते थे, वहां गांधी जी पुनः समझाते थे, लेकिन गांधी जी कभी उनका विरोध नहीं करते। आज भी अगर हम गांधी पे बात करने जाएंगे, तो कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ महीने तक युवा हमसे नाराज रहेंगे, लेकिन जब हम उनको ठीक से समझाएंगे कि आप गांधी को पढ़िए, गांधी के क्या क्या विचार है, तो युवा अपनी नाराजगी को दूर कर सकता है। लेकिन आज युवाओं के बीच में गांधी को ले जाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज जो व्हाट्सएप मीडिया चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके माध्यम से गांधी के बारे में युवाओं को बुरी जानकारी दी जा रही है, गलत जानकारी दी जा रही है। इसमें आप जैसे युवाओं की ज्यादा भूमिका हो जाती है, पत्रकारों की ज्यादा भूमिका हो जाती है, चिंतन करने वाले लोगों की ज्यादा भूमिका हो जा रही है, कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लिखे कि नहीं भाई, आप गांधी के खिलाफ जो लिख रहे हो, आप बिना पढ़े हुए लिख रहे हो, आप पढ़ करके लिखे, गांधी का ऐसा विचार नहीं है। तो युवा जुड़ेगा। युवा ऐसा नहीं है कि गांधी का चिर प्रतिरोधी है या चिर विरोधी है, नहीं, उसके पास जानकारियां नहीं हो रही है, या तो पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए गांधी का विरोधी हो जा रहा है, गांधी के थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। तो गांधी तो अपने विरोधियों को भी लेकर के चलते थे। तो युवाओं के बीच में अगर गांधी को ले जाना है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि कुजात गांधीवादियों को भेजा जाए, वो जा करके उनके बारे में समझाएंगे, और युवा उस समय मोटिवेट होगा, युवा उस विचारों को समझेगा।
सर, सत्य अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी जी ने अपने योगदान दिया है
जी,
और इस सत्य और अहिंसा के बल पर कई आंदोलन हुए, इसके माध्यम से सरकार तक आवाज उठाने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से जो भी पार्टियों को, जो भी प्रतिनिधियों को आवाज पहुंचाने में एक बहुत बढ़िया माध्यम बापू ने रखे हैं सत्य अहिंसा के बल पर
जी।
तो सर, इसको आज के परिवेश में जो भी आंदोलन हो रहे, किस तरीके से देख रहे सर, और जो भी अभी वर्तमान में किसान आंदोलन देख लीजिए, जो भी युवा अपनी मांगों को लेकर अभी भी धरने पर बैठे, तो इसके परिप्रेक्ष्य में सत्य अहिंसा के बल पर जो बापू ने जो आंदोलन किए थे सर, तो आज क्या करने की आवश्यकता है? कई युवा है जो आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर।
देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है
जी।
और लोकतंत्र का सबसे मजबूत साधन अहिंसा और सत्य होता है। यह डेमोक्रेसी का नींव है। अगर आप डेमोक्रेसी को झूठ के बल पर खड़ा करने का प्रयत्न करेंगे, तो डेमोक्रेसी एक ना एक दिन भारा करके गिर जाएगी। गांधी और जो आंदोलन होता है, वह डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए होता है, डेमोक्रेसी को जगाने के लिए होता है। और आंदोलन में भी हिंसा की जगह नहीं होती है। आंदोलन का मतलब हिंसा नहीं होता है, आंदोलन का मतलब होता है बदलाव का रास्ता, आंदोलन का मतलब होता है चेतना को जागृत करना, आंदोलन का मतलब होता है सोई हुई सत्ता और सोई हुई सरकार को जगाना। तो क्या सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हिंसा की जरूरत है? गांधी ने कहा कि अगर कोई आपका कहना नहीं मानता है तो हृदय परिवर्तन करो उसका, और हृदय परिवर्तन के लिए गांधी ने साधन रखे, हिजरत करना, उपवास रखना, अपने आप को तपाना, उसका कहना नहीं मानना, उसके गलत कार्यों का विरोध करना। तो गांधी ने तो जितने भी आंदोलन किए वो सफल परिणाम निकला, और परिणाम इसलिए सफल हुआ कि गांधी उसमें कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन आज जो वर्तमान दौर चल रहा है इसमें आप देखिए योगेश भाई कि जो आंदोलन हो रहे, अगर शांतिप्रिय आंदोलन हो रहा है तो मीडिया उसको व्यापक मात्रा में कवरेज नहीं कर रही है। दूसरा जो आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन हो रहा है वहां पूरे देश की मीडिया पहुंच जा रही, वहां देश के पूरे मानवाधिकार कार्यकर्ता पहुंच जा रहे, वहां कुछ पुरस्कार वापस करने वाले लोग पहुंच जा रहे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आंदोलन के माध्यम से कोई रास्ता निकले। अगर आंदोलन के माध्यम से रास्ता निकल जाए तो उनको राजनीति की रोटियां सेकने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गए हैं जो जानबूझकर के आंदोलनों में हिंसा को भड़काते रहे, और आजकल का जो आंदोलन हो रहा है वो सरकार के विरोध में आंदोलन हो रहा है, जबकि आंदोलन सरकार के विरोध में नहीं होता है। आंदोलन होता है सरकार को जगाने के लिए, आंदोलन होता है व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए। आज सरकार किसी और की है, कल किसी और की रहेगी, तो सरकार को तो चुनकर हम ही दिए है ना भाई, 125 करोड़ जनता जो है देश की सरकार को चुन करके दिए। तो हमारा मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि हम सरकार को हिलाने के लिए हिंसा करें, हमारा मतलब ये होता है कि हम सरकार को अहिंसात्मक तरीके से जगाए, नहीं मान रही है तो उसके जो आंदोलन के तरीके है उसको अपनाए। लेकिन हिंसा कभी भी आंदोलन, अगर आंदोलन में प्रवेश कर जाएगा तो आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए आप वर्तमान दौर के आंदोलनों को देखिए कि वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। कारण है कि 10 दिन 15 दिन चल रहे और उसमें हिंसा हो जा रही है, तो एक तरफ से पुलिस लाठी चार्ज कर दे रही है, दूसरी तरफ से जनता उबाल आ दे रही है, तो उसमें नाना प्रकार के मुकदमे दायर कर दिए जा रहे, नाना प्रकार के कोर्ट के परविशे लागू कर दी जा रही है, नाना प्रकार के व्यवधान लागू कर दिए जा रहे और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लेकिन आप इन्हीं दौरों में देखिए कि जो आंदोलन गांधी के रास्ते से लड़े गए उस आंदोलनों का परिणाम निकला। किसान आंदोलन का ठीक है, जो भी परिणाम आया वो भविष्य में क्या होगा, सरकार धोखा देगी कि क्या देगी, लेकिन अभी तक तो देखा जाए तो किसान जीते हैं। और इस किसान आंदोलन जो 11 महीना चला उसमें आप सैद्धांतिक तौर पर देखिए तो गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों खड़े थे। गांधी के सभी ने अवज्ञा को अपनाया गया और डॉक्टर लोहिया के सिविल नाफरमानी को अपनाया गया। लोहिया कहते थे कि बदलाव के तीन साधन है, जेल, फावड़ा और मतदान। किसान जेल भी गए, फावड़ा का मतलब रचनात्मक काम, उन्होंने अपने खेती का काम भी किया, और मतदान का भय दिखा करके सरकार को डराए भी, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए। अगर वही किसान शुरू से ही हिंसा का रास्ता अपना लेते तो उनके जगह पे पुलिस भारी पड़ जाती और पुलिस डंडा लाठी चला करके उनको भगा दे। तो हम तो आंदोलन से सीख रहे हैं, हमें आंदोलन से सीख लेना चाहिए। गांधी हमारे बीच में खड़े कि अगर गांधी के रास्ते को हम लेकर के बैठ गए तो कौन सी ऐसी सरकार है जो नहीं झुकेगी। लेकिन जरूरत है कि हम मांब को अपने आंदोलन के साथ जुड़े। हम आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन आंदोलन की पूर्व तैयारी हम नहीं कर पाते, और जब आंदोलन की पूर्व तैयारी नहीं होती है तो उसमें हिंसा प्रवेश कर जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी मुद्दे को लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं तो पहले तो उसका व्यापक जन जनता में प्रचार हो। गांधी के आंदोलनों को उठा करके देखिए, वो एकाएक आंदोलन नहीं करते थे, वो समय देते थे सरकार को कि हम 3 महीने बाद आंदोलन करने आएंगे, आप सचेत हो जाओ। और वो 3 महीने में क्या करते थे, अपने मुद्दे को आम जनता तक, गांव गांव तक, गरीब के झोपड़ी तक, माने गांव के एकदम पिछड़े हुए इलाके तक पहुंचा देते थे और वहां से जनता को निकाल लेते थे। आज क्या हो रहा है, आज नेतृत्वकर्ता को यह देखा जा रहा है कि नेतृत्वकर्ता किस जाति का है, उसके आधार पर आंदोलन चल रहा है, उसके आधार पर जातियां भी सपोर्ट कर। तो आज तो आंदोलनों में जाति प्रवेश कर गई है, और जब आंदोलनों में जाति प्रवेश करेगी तो स्वाभाविक है कि हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो आंदोलनों का परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए अगर आपको आंदोलन करना है तो जरूरी है कि जितना आपकी मांग पवित्र है उतना ही आपका साधन पवित्र। गांधी तो कहते थे कि साध्य की पवित्रता, साध्य को प्राप्त करने के लिए आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए, और वह साधन सभी ने अवज्ञा, अहिंसा और सिविल नाफरमानी का है। इसलिए अपने आंदोलन के मुद्दे को जनता तक पहुंचाइए और उससे जनता को जुड़िए, ऑटोमेटिक अहिंसात्मक आंदोलन हो जाएगा और सफल हो जाएगा।
जी सर, सर क्या बापू के विचारों का राष्ट्रवाद को किस तरीके से प्रस्तावित किया जाना चाहिए सर?
बापू का राष्ट्रवाद क्या था? बापू ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानू। बापू का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, बापू का राष्ट्रवाद था कि जो प्रकाश पुंज है, जो अवसर की समानता है, जो व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, वह गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे, किसी अमीर के झोपड़ी पर जाकर के न रुक जाए। उनका जो राष्ट्रवाद था वह मानवता को जिंदा करने वाला था। उनका जो राष्ट्रवाद था समता का राष्ट्रवाद था। उनका जो राष्ट्रवाद था धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद नहीं था, जाति के आधार पर राष्ट्रवाद नहीं था, वो सभी धर्मों सभी पंथों को समान मानने वाला राष्ट्रवाद था। वो कभी समाज तोड़कर के राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहते थे और राष्ट्र तोड़कर के समाज का निर्माण नहीं करना चाहते थे। गांधी का जो राष्ट्रवाद था वह व्यापक राष्ट्रवाद था, उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। उन्होंने तो कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि अवसर की जो समानता है, देश के अंदर जो संसाधन है वो सभी के पास समान मात्रा में पहुंच जाए, रचनात्मक कार्य उनका राष्ट्रवाद था। लेकिन आज राष्ट्रवाद के नाम पे क्या किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे गांधी को गाली दिया जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पे गांधी के प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है। यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह तो राष्ट्रवाद का कोई रूप ही नहीं है। आज जो दल राष्ट्रवाद के नाम पे काम कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल, वह संकीर्ण राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और संकीर्ण राष्ट्रवाद की बात करते करते जाति पे आ जाते थे, तो गांधी का जो राष्ट्रवाद था वह व्यापक राष्ट्रवाद था, वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी जाति धर्म के लिए नहीं था, वह संपूर्ण जनता के लिए था। वो तो चाहते थे कि जो भी व्यवस्था है, जो भी हमारे यहाँ संसाधन है, वह सभी लोगों के पास समान मात्रा में पहुंचे, तब जाकर के राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है, ऐसे राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हो सकता है।
सर क्या सर सरकार की कोई भी योजनाएं देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है जिस तरीके से बापू का जो राष्ट्रवाद था उनके विचारों के माध्यम से?
देखिए, पहली बात तो जो सरकारें चुन करके आ रही है वह चुनाव के दिन तक गांधी का नाम लेती है, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव होने के बाद गांधी को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि गांधी के रास्ते को अगर वो अपनाते तो चुनाव इतना महंगा नहीं होता। आज चुनाव कितने में लड़े जा रहे हैं, एक विधानसभा का प्रत्याशी 5-5 करोड़ रुपया खर्चा करके चुनाव लड़ रहा है। भाई इतने खर्चा करके आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? कहीं ना कहीं आपको आशा है कि हम 5 करोड़ लगाएंगे तो हम 10 करोड़ रुपया कमा लेंगे। दूसरी बात वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको एक आजीवन पेंशन मिलने लग रहा है। अगर वो 10 दिन के लिए भी विधायक बन गए, 1 साल के लिए विधायक बन गए, 5 साल के लिए विधायक बन गए, तो आजीवन उनको पेंशन मिलेगा। तो आज राजनीति जो है सुख सुविधा का साधन बन गई है, इसलिए लोग चुनाव में बड़े बड़े पैसे लगा करके चुनाव लड़ रहे। और वो किसके बल पे चुनाव लड़ रहे? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडों के पैसे के आधार पर चुनाव लड़ रहे। और वो काम किसके लिए कर रहे चुनने के बाद? आम जनता के लिए नहीं कर रहे। तो अगर वो गांधी को केंद्र में रख करके काम करते, चुनाव लड़ते, तो यह नतीजा नहीं आता। इसलिए वो चुनाव के दिन के, चुनाव जीतने के बाद गांधी को भूल जाते। तो जो सरकार की योजनाएं है वो पारदर्शी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है नेतृत्व करने वाला जो गांधी के रास्ते को दिखाए कि नहीं ये रास्ता है। सब लोग उस रास्ते को भूल गए, क्योंकि आज के जो दल बन रहे, आज की जो सत्ता आ रही है, उस सत्ता में नैतिकता नहीं है, उस राजनीतिक दलों में सत्याग्रह नहीं है, उस राजनीतिक दलों में सत्य नहीं रह गया है, असत्य का बोलबाला हो गया। तो जब असत्य का बोलबाला हो जाएगा, असत्य के मार्ग पर सरकार चलने लगेगी, तो यह तय है कि सरकार की जो योजना है वो गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि गरीब सिर्फ और सिर्फ मतदाता बन करके रह गया है, वो सरकार गिराने वाला, सरकार बनाने वाला नहीं रह गया है। आज सरकार का निर्माण और सरकार को बनाने का काम ये पैसे वाले कर रहे, इसलिए सारी योजनाएं पैसे वालों के दरवाजे तक दस्तक दे रही है, बाकी गांव में किसी का कोई काम नहीं हो रहा है।
जी सर, तो डॉक्टर अनूप सर ने मोबाइल वाणी के माध्यम से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मोबाइल वाणी के साथ जानकारी दी। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई।
छिंदवाड़ा वालेंस से आपका दोस्त योगेश।